नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर राज्य के खजाने को विकास कार्यों और आवश्यक अधोसंरचना पर खर्च करने के बजाय फिजूल खर्ची और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को 5 वर्ष के कार्यकाल में 54,296 करोड़ रूपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला था। इसके अलावा पूर्व भाजपा सरकार को 16,000 करोड़ रूपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति भी मिली थी, जिसका उपयोग राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय मुफ्त योजनाओं और केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों और संस्थानों को खोलने पर खर्च किया गया। उन्होंने कहा कि इसके मुकाबले वर्तमान सरकार को पिछले 3 वर्षों में केवल 17,563 करोड़ रुपए आरडीजी मिली है, जो भाजपा को मिली राशि से लगभग आधी है। इस बीच मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार पर लगाए गए वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों को सिरे से नकारते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 16वें वित्त आयोग में राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने का ऐलान अभी किया, लेकिन तैयारियां 15वें वित्त आयोग ही नहीं 12वें वित्त आयोग के बाद आयोग बार बार कह रहा है कि राजस्व अनुदान घाटे को अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता, ये केंद्र की ओर से मदद है।
मुख्यमंत्री जी, आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में जो बातें कह रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि 16वें वित्त आयोग में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का ऐलान अभी किया, लेकिन तैयारी 15th फाइनेंस कमीशन ही नहीं 12वें वित्त आयोग के बाद बार बार फाइनेंस कमीशन इसी बात को कह रहा है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को आप अधिकार के रूप में नहीं ले सकते। आपके लिए मदद है केंद्र की ओर से, लेकिन ये आपके इस तरह से नहीं कि आप इसको यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसा नहीं संभव है। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करिए बार बार कहा जा रहा था, लेकिन ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय सत्ता रही कांग्रेस पार्टी की। अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, हिमाचल अगर आर्थिक रूप से पटरी से उतरा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान उन सरकारों का रहा है।
नगर व ग्राम नियोजन विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जनसमस्याओं का समयबद्ध निवारण करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रणाली के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत नगर व ग्राम नियोजन विभाग में 3 स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत डिविजनल, जिला और राज्य स्तर पर शिकायतों की सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया तय की गई है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि चंबा, ऊना और बिलासपुर जिलों में डिविजनल टाउन प्लानिंग कार्यालय न होने की स्थिति में चंबा के लोग, धर्मशाला, ऊना के हमीरपुर और बिलासपुर जिला के लोग टाउन एंड कंट्री प्लानर मंडी को अपनी शिकायतें प्रेषित कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन ने गर्मियों से पहले 9 बड़ी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि कुछ छोटी योजनाएं भी हैं जिन पर कार्य चल रहा है, लेकिन बड़ी योजनाओं के कार्य को विभाग युद्ध स्तर पर पूरा कर रहा है, जिससे कि गर्मियों तक इन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। जल शक्ति विभाग धर्मशाला जोन के मुख्य अभियंता दीपक गर्ग ने बताया कि जयसिंहपुर क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाओं पर करीब 100 करोड़ रूपये खर्च हो रहे हैं, जिन्हें आगामी 1-2 महीने के भीतर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
इस वित्तीय वर्ष जो हमारा मार्च 26 में खत्म हो रहा है, लगभग 9 ऐसी योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं, छोटी भी काफी हैं, लेकिन मैं बड़ी योजनाओं की बात करूंगा जो हम कांगड़ा चंबा में हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जैसे मैं मेजर तौर पे जाऊं तो जयसिंहपुर क्षेत्र की 2 बड़ी योजनाएं हैं, एक चढ़ियार क्षेत्र के लिए है, एक जो आपका निचला क्षेत्र है जो जयसिंहपुर का, उसके लिए है। लगभग इन दोनों योजनाओं पे 100 करोड़ के करीब खर्च हो रहा है। ये हम अगले 1.5-2 महीने में लोगों को समर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि उनको हम गर्मियों से पहले लोगों को उनका लाभ हम पहुंचा दें।
उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में लोगों और सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों में कृत्रिम बुद्धिमता के सुरक्षित उपयोग की जानकारी होना आवश्यक है, और जिला किन्नौर सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ये अति आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमता के कारण आवश्यक और संवेदनशील सूचनाओं का दुरुपयोग न हो सके। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमता और डीप फेक जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षित डिजिटल विकल्पों का चुनाव करना, साइबर हाइजीन, आम जनता को अपने पासवर्ड की सुरक्षा और संदिग्ध लिंक्स से बचने की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमित कुमार ने कहा कि डिजिटल साक्षरता के माध्यम से युवाओं और छात्रों को ऑनलाइन जानकारी की सत्यता परखने और व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।